नमस्कार श्रोताओं, गिद्धौर मोबाइल वाणी के लिए मैं संजीवन कुमार सिंह। चंद दिनों के बाद लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में भारी भरकम घोषणाओं से पर्याप्त दूरी बरती और इस बजट की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें पूंजीगत व्यय बढ़ाने के बावजूद वित्तीय घाटे को कम करने का सफल प्रयास किया गया है। यदि किसी देश में पूंजीगत व्यय की मात्रा बढ़ाई जाती है तो इससे उन देश के लिए आय के साधन भी बढ़ते हैं। पिछले 2 वर्षों के दौरान ही पूंजीगत व्यय में खर्च बढ़ाने के कारण भारत की सकल आय में बढ़ोतरी दिख रही है। न केवल अप्रत्यक्ष कर वस्तु एवं सेवा कर की औसत मासिक वसूली 1.66 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है, बल्कि प्रत्यक्ष करों में भी 25% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी के चलते केंद्र सरकार वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने में सफल हो रही है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय घाटा कम होने का सीधा अर्थ है कि केंद्र सरकार को बाजार से कम कर्ज लेने की जरूरत होगी, क्योंकि उसके द्वारा किए जा रहे पूंजीगत खर्च में वृद्धि के कारण उसके लिए आय के साधन बढ़ रहे हैं। इससे भारतीय बैंकों को निजी क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने के लिए अधिक राशि उपलब्ध होगी। वैसे भी पिछले 2 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा किए गए पूंजीगत खर्च के चलते देश के आर्थिक चक्र में तेजी आई है और उत्पादों की मांग में वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करते हुए यह घोषणा भी की कि 1 करोड़ घरों को जो सोलर पैनल का उपयोग करेंगे 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, ताकि भारत में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिल सके और पेट्रोल डीजल व कोयले के उपयोग को कम किया जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ अतिरिक्त नए मकान बनाने का ऐलान भी किया गया है। अच्छी बात यह भी है कि केंद्र सरकार ने रेवड़ियां बांटने के स्थान पर पूर्व की तरह देश में आधारभूत संरचना को विकसित करने पर अधिक जोर दिया है। इससे देश की सकल आय में वृद्धि हो रही है और युवा, महिला, किसान व गरीब वर्ग के हित में नई नई योजनाएं चलाने में आसानी हो रही है। साफ है कि लोगों को छत, स्वच्छ जल, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था किए जाने के भरपूर प्रयास बजट में किए गए हैं। इससे देश के नागरिकों में विश्वास पैदा हो रहा है। बता दें कि गुरुवार को पेश वोट ऑन अकाउंट, जिसे अंतरिम बजट भी कहा जा रहा है, इस बात का संकेत है कि इस हुकूमत की नज़र में चुनाव अब एक औपचारिकता है, यानी हर स्थिति में उसे ही सत्ता में रहना है। चुनाचे इस बार आम लोगों को लुभाने के लिए कोई ऊपर से मीठा मगर चूसने के बाद कड़वा लगने वाला लॉलीपॉप देने का ऐलान नहीं किया गया है, मगर सामाजिक क्षेत्र की लगभग हर योजना, मनरेगा व आयुष्मान सहित खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बाल, महिला, वंचित समुदाय कल्याण, ग्रामीण विकास वगैरह पर बजट आवंटन या तो सीधे कम कर दिया गया है या उतना ही है, या फिर महंगाई की तुलना में उनमें नगण्य वृद्धि की गई है। कुल मिलाकर प्रभावी रूप से हर सामाजिक योजना पर खर्च में कटौती कर दी गई है। इसी से सरकार ने वित्तीय घाटा कम दिखाया, जिससे पूरा पूंजीपति वर्ग गदगद है। चुनाव पूर्व यह स्थिति है तो चुनाव के बाद ही कल्पना खुद कर लें। अमीरों के ऐश्वर्य के सामान को छोड़कर आम जन के रोजाना उपभोग के हर सामान की कंपनियां जूता, कपड़ा, बिस्किट, चायपत्ती, क्रीम, तेल, शैम्पू वगैरह बनाने वाले का कहना है कि नग के हिसाब से बिक्री घटी है। हालांकि महंगाई की वजह से रुपए में बढ़ी त्री हो सकती है, यह रुझान बढ़ेगा। रोजगार और मजदूरी दर की स्थिति पहले से खराब है, यह और भी बदतर होगी। छटनियाँ की तादाद बढ़ेगी, मगर पूंजीपति वर्ग खुश हैं, उसके लिए यह सब प्रसन्नता का विषय है। आखिरकार जो खर्च घटाया गया है वह उसी को फायदा पहुंचाने में इस्तेमाल किया जाएगा। अंतरिम बजट से आस लगाए आम आदमी को निराशा ही हाथ लगी है। यह बजट ऐसे समय पेश किया गया है जब नौकरी का सवाल अहम है और लोग महंगाई से परेशान हैं, मगर इन सब का उचित जवाब बजट में नहीं मिल रहा है। हालांकि आम नागरिकों की खुशहाली व तरक्की के खूब वादे किए जाते रहे हैं, लेकिन जब इन वादों को अमली जामा पहनाने का वक्त आता है तो हाथ झाड़ लिया जाता है। देश में 20 से 24 साल के नौजवानों की बेरोजगारी दर 45% है, लेकिन बजट में इस मुद्दे पर सन्नाटा रहा। मनरेगा को भी तहस नहस कर दिया गया है। ऐसे में सवाल यही है कि किस आधार पर इस बजट को तरक्की और खुशहाली का आधार बताया जा रहा है। तो श्रोताओं, आप क्या सोचते हैं इस बजट के बारे में, जरूर रिकॉर्ड करें नंबर 3 दबाकर। धन्यवाद।